नारी और शूद्र दोनों मनुष्य ही होते हैं। नारियां पुरुषों से और अवर्ण सवर्णों से हीन नहीं होते। सामाजिक व्यवस्था में उन्हें दीन बना रखा है। वे दोनों दलित और शोषित थे सामंती व्यवस्था में। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में नारी और शूद्र का सह उल्लेख बहुत मिलता है। इससे पता चलता है कि वह समाज के सर्वाधिक दलित शोषित अंग थे। वस्तुतः तुलसीदास ने जब ढोल गवार शूद्र पशु नारी लिखा, तब वे धर्म ग्रंथों के उन सह उल्लेखों की परंपरा की पुनरुक्ति कर रहे थे। भक्ति आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इसके प्रवर्तन और प्रचार में अवर्णों की भूमिका प्रधान थी। ऐतिहासिक तथ्यों को एकत्र करने से इस अनुमान को आधार मिल जाता है कि इस आंदोलन के प्रवर्तन के पीछे राजनीतिक आर्थिक कारणों से वर्ण व्यवस्था का ढीला पड़ना है। अवर्णों में ऐसा भी वर्ग था जो आर्थिक दृष्टि से इतना विपन्न नहीं था, चाहे वे वर्ण व्यवस्था में नवदीक्षित पहले की खेतिहर आदिम जातियां रही हों चाहे वन्यजीवी कारीगर। इस आंदोलन में सवर्ण जातियों का विशेष रूप से रामानुजाचार्य एवं रामानंद जैसे उदार ब्राह्मणाचार्यों का निर्णायक योगदान था, जिन्होंने इसे सामाजिक एवं शास्त्रीय गरिमा प्रदान की। इस आंदोलन ने बहुत बड़ी तादाद में अवर्णों एवं नारियों की जाति पांति और घर की चार दीवारी की कुंठा को तोड़कर भगवान की उपासना करने की प्रेरणा दी। मीराबाई उन्हीं में से एक किंतु उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध युवती जन भक्त थी। नामदेव, कबीर, रैदास, नरसी, तुलसी को भक्ति के अनुसार आचरण करने पर सामंती व्यवस्था के ठेकेदारों से टकराना पड़ा था, मीरा को भी। लेकिन मीरा नारी थी, इसलिए इनके संघर्ष का रूप और भी विषम था। भक्ति आंदोलन भावनात्मक धरातल पर जाति पाति और नारी स्वाधीनता का विरोधी था, तो भक्त कवियों की रचनाओं में नारी निंदा क्यों मिलती है? तुलसी के यहाँ नारी निंदा समझ में आ सकती है, क्योंकि वह वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। लेकिन कबीर तो जाति व्यवस्था के विरोधी थे, उनके यहाँ नारी निंदा क्यों मिलती है? रूपा जी और तत्वा जी की बेटियों की शादी की अभूतपूर्व व्यवस्था देने वाले कबीर नारी की छाया परत आंधर होत भुजंग कैसे लिखते हैं, इस पर विचार करना प्रासंगिक और अनिवार्य है। भक्त कवि साधक थे, वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। कबीर, तुलसी, सूर, रैदास, मीरा आदि में परस्पर समानता असमानता हो सकती है और है, किंतु सदाचार संयम के विषय में वे एक हैं। इंद्रिय लोलुपता के विरुद्ध वे सभी एक हैं। छद्म आधुनिकों में से अनेक तो इनको इसलिए शुष्क एवं अपठनीय पाते हैं। भक्तों को ही नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद को भी ये नैतिकता का दुराग्रही कहते समझते हैं। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि नाथ सिद्धों की साधना शरीर और मन की साधना थी, भक्तों की साधना हृदय की साधना थी, और हृदय की साधना शरीर एवं मन की साधना का अगला कदम है। शरीर और मन को निर्मल किए बिना हृदय को निर्मल नहीं किया जा सकता। जो लोग भावना की यानी हृदय की साधना के नाम पर असंयम की छूट उचित समझते हैं, वे या तो भ्रमित हैं या ढोंगी। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि प्रेम शारीरिकता पर आधारित लेकिन उससे ऊपर अनन्यता की स्थिति का नाम है। अनन्यता सामाजिक संबंधों का निर्धारण करती है। यहाँ सभी नारियां और पुरुष समान नहीं, सबसे रिश्ते हैं यानी सबसे अलग संबंध है। कोई बहन है, कोई बेटी, कोई भाभी, कोई माँ, कोई भतीजी, कोई शिष्या और कोई पत्नी। संबंधों का कुल योग ही सामाजिकता है, या मानवीय समाज की नई यानी मानवीय विशेषता है, यानी मानव समाज में ही है, शेष प्राणियों, पशु पक्षियों, सरीसृपों में नहीं। एंगेल्स ने परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक एक अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि वन मानुषों के जीवन और मनुष्य समाज में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह उत्पन्न हुआ कि मनुष्य में पारस्परिक सहिष्णुता की भावना पैदा हो सकी, वह अपने को ईर्ष्या से मुक्त कर सका। इसके बगैर विशाल समाज चल ही नहीं सकता। सहिष्णुता और ईर्ष्या रहितता के बिना मनुष्य वन मानव से अलग नहीं हो सकता था। धन के कई रूप हुए, गो, स्त्री, पृथ्वी आदि। किसी का धन न हड़पो का मतलब यह नहीं कि कोई आदमी जरूरत से ज्यादा धन एकत्र कर ले तो उसका भी न हड़पो। जो इस नियम का पालन नहीं करता उसके साथ इसका पालन न करना अनुचित नहीं होगा। सामंती नैतिकता नारी और भूमि के को एक दृष्टि से देखती थी। वहाँ माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का सिद्धांत वीर भोग्य वसुंधरा में बदल गया। सामंत का राज्य बहुत बड़ा, उसकी सेना बहुत बड़ी तो उसका अंतःपुर भी बहुत बड़ा। भूमि दान की जाती है तो स्त्री भी दान की जाती है। जुए में गांव, भूमि, पैसा दांव पर लगाया जाता है तो स्त्री भी। सामंती व्यवस्था में नारी का रूप बहुत कुछ ऐसा है जो धन का पर्याय है। नगर मंडन में वेश्या मंडन जरूर होता है, यानी नगरों में वेश्याहाट जरूर होता था। जितना बड़ा नगर उतना प्रभावशाली वेश्याहाट। शासक, सामंत, सैनिक मरे तो स्वर्ग में भी अप्सराएं उनके स्वागत की तैयारी करने लगती थी। इस विषय में हिंदू मुसलमान शासकों की नैतिकता समान थी। आखिरकार महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी भी तो धर्म युद्ध के लिए सैनिक लाते थे। वे भी लड़ाई में मरे तो जन्नत में हूरे मिले। विदेशी आक्रामक भी मंदिरों को ध्वस्त करके पुण्य कमाने के नाम पर ही धन कमाते थे। मंदिरों को तोड़कर धन भी मिला और कुफ्र के विनाश का पुण्य भी। सती प्रथा का रिवाज स्वर्णों में ही था, शूद्रों में नहीं। वहाँ औरतें बैठकर खाना नहीं खाती थी। वे मेहमान मेहनत करके घर में दाने भी लाती थी। वे आर्थिक दृष्टि से उपयोगी थी अपने परिवार के लिए, इसलिए उन्हें जलने की जरूरत नहीं थी। यह पुण्य और इज्जत उन्हें नहीं मिलते थे। सवर्णों में भी सती प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित शासक परिवारों में थी। शासक के मरने पर केवल पत्नियां या रखैल ही नहीं सती होती थी, नौकर चाकर भी जलते थे। परलोक में राजा को पान कौन खिलाएगा, अजामत कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन खिलाएगा? ब्राह्मण देवता भंडारी थे, उन्हें भी जलना चाहिए, लेकिन वे बच जाते थे। मृगावती के नायक की मृत्यु हुई तो उसकी दोनों विवाहिता पत्नियां मृगावती और रूपमिति सती हो गईं। 84 रानियां और भी थीं, वे भी निराश्रित होकर परलोक गईं। अलग चिता जलाकर बारी जले, उसी चिता पर नाव भी जले, पान खिलाने वाले थावाइत जले, पानी पिलाने वाले जले, कपड़ा संवार देने वाले जले, धोबी जले, इनकी नारियां भी जली, जीवनार कराने वाले जले, सिर्फ रसोई ब्राह्मण नहीं जले। आधा नगर ही जलकर शमशान हो गया। रूप में निपुण वैसे ही मरी गई। कुलवंती सत सेव सती भई, राजा संग रानी चौरासी, तेसव गमनी वैरे निरासी, मृगावती और रूपमिनी लयक बरी कुंवर के संघात, भसम होई के जरी कै चिन्हा रह पै गात, छोट विधि कोई रह न अकेला, करता केर चरित सब खेला, बेगर सर रची बरी जरे, नाउ तही सर ऊपर बरे, जरे थवाइत पान खियावत, औते जरे जो पानी पियावत, जरे जो कापर देत समारी, धोबी जरे छड़ी बर नारी, औरते जरे जो करत जीवनाराय, एक न मामन जरे सुआरा, आधा नगर अधिक इछु निघटा जरी के भा मसियान। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में नारी का संपत्ति या धन के रूप में उपयोग होता था। सामंती दृष्टि नारी का पूर्ण रूप नहीं देखती थी, वह नारी को शरीर ही समझती थी। वस्तुतः कबीर आदि संत जब नारी निंदा करते हैं तो उनका आशय नारी के सामंती रूप की निंदा करना होता है। नारी को केवल रमणी है, शरीर है, माँ नहीं, पुत्री नहीं, पतिव्रता नहीं, वह माया का रूप है। कबीर की यहाँ माया कनक और कामनी के रूप में दिखलाई पड़ती है। कनक में क्या बुराई है? कबीर स्वयं इतना धन तो अवश्य चाहते थे कि न खुद भूखे रहें, न उनके घर आया हुआ भूखा सोए। लेकिन ज्यादा धन कैसे कमाया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इससे कबीर परिचित थे। इसीलिए कनक माया का रूप बना। कामिनी का कंचन से बहुत गहरा संबंध है। छायावादी कवि प्रसाद ने कंचन, कामिनी, कादम्बनी को एक श्रेणीबद्ध किया, लेकिन वह इसे नारी का सहज रूप मानते हैं। यह समझना प्रसाद को न समझना होगा। यही बात कबीर आदि भक्त कवियों के बारे में भी लागू होती है। कबीरदास नारी के कामिनी रूप की निंदा करते समय यह नहीं समझते थे कि नारी को कामिनी बनाने का बहुत कुछ श्रेय कनक को है। ऐसा समझते तो वह संभवतः कामिनी की निंदा करने के बजाय उसे सहानुभूति देती। ऐसी संभावना का आधार कबीर की कविता ही है। कबीर ने कामिनी की निंदा की, लेकिन सती को साधना का आदर्श माना। सती जो पति प्रेम की चिता पर बैठकर भस्म हो जाती है, इस अनन्यता और परम त्याग को वे संत साधना का आदर्श मानते हैं। डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे मरे बनी आवे, लीना वहां थी सिधौरा। सती भी नारी होती है या नहीं, कबीर ने अनेकर्मी पतिव्रता को अंग लिखा है। आए अनेक गुण वाले कंत, तुझसे भी मेरी प्रीति है, किसी और से हंसू बोलू तो दांतों में नील रंगाऊं, तू नैनों में आ जा मैं पलके मूंद लूं, न मैं और किसी को देखूं, न तुझे किसी को देखने दो। सौभाग्यवती के माथे पर सिंदूर की रेखा है, काजल नहीं दिया जाता। नैनों में राम है, काजल की जगह कहाँ है। कबीर प्रीतणी तो तुझ सौ बहु गुण याले कंत, जे हसी बोला और सौ तो नील रंगाऊ दंत। नैना औतरी आव तू जो ही नैन झपेऊ, नाहो देखो और कुना तुझ देखन देऊ। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। यह निकर्मी प्रतिव्रता नारी है जो कबीर की अनन्य भक्ति का आदर्श है। कबीर ने अपने को बालक कहा, भगवान को माँ, हरिजननी में बालक तोरा। अपने को राम की बहुरिया कहा। यह सब कबीर के नारी निंदक होने का प्रमाण नहीं देते। नारी निंदा करते समय कबीर ने जो चित्र खींचे हैं वे प्रायः गलत किस्म की औरतों के हैं, जो माया का रूप है, जो साधक को साधना मार्ग से विचलित करती है, जिनमें अनन्यता नहीं है। यह बहुत बड़ी विडंबना होती यदि गृहस्थ होकर भी संत कहे जाने वाले कबीर नारी पात्र को निंदनीय मानते। कबीर की ही तरह तुलसी भी नारी निंदक कहे जाते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में सहज अपावन नारी लिखा, ढोल गवा शुद्र पशु नारी लिखा, नारियों में अवगुण आठ सदा उर रहई लिखा। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, इसलिए इन वक्तव्यों को देशकाल और पात्रों के संदर्भ में देखना चाहिए। तुलसीदास पूर्ववर्ती कवियों और उक्तियों का मजमून छीन लेने में लासानी है, हालांकि इससे उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होती। हिंदी की नहीं, संसार में ऐसे कम कवि होंगे जो नारी को तुलसी से ज्यादा समझते, जिन्हें नारी जीवन का सबसे ज्यादा परिचय हो। चित्रण करते समय नारी की निंदा करने वाले तुलसी की करुणा नारी की असमर्थता की ओर सहज उन्मुख हो जाती है। जिन तुलसी ने ढोल गवार शुद्र पशु नारी लिखा, उन्होंने लिखा, कत विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तुलसी नारी पराधीनता के कारणों को नहीं समझते रहे होंगे, लेकिन उसकी पराधीनता को पहचानते और महसूस करते थे। कबीर ने पति प्रेम में सती हो जाने वाली को साधना का प्रेरक माना, तो तुलसी ने सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करते हुए लिखा, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, लेकिन पति अमित दानी है। वह नारी अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धैर्य धर्म मित्र और नारी की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। वृद्ध रोगी जड़ धनहीन अंधा बहरा क्रोधी अति दीन पति हो तो भी उसका अपमान करने वाली पत्नी को यमपुर में नाना दुख मिलते हैं। माता पिता भ्राता हितकारी, हितप्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता वै देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो पति कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। यह मध्यकालीन समाज का नारी विषय का आदर्श। इस आदर्श के विषय में शंका करने का अधिकार किसी को नहीं। तुलसी से पूछा जाता कि वृद्ध रोगी अंधे बहरे क्रोधी जड़ पति का अपमान पत्नी क्यों न करे, अपमान करने पर उसे यमपुर में दुख क्यों भोगना पड़ेगा, पति को क्रोध करने का दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो बाबा क्या उत्तर देते हमें नहीं मालूम। संभवतः वह कहते, लोकवेद की यही रीति है, यही उचित है, यह सिद्धांत आदर्श की बात है। लेकिन तुलसी से कहा जाता कि ऐसी आदर्श पतिव्रता के रूप में उन्होंने किसी नारी का चित्रण क्यों नहीं किया, क्या बुरा होता यदि रामचरितमानस में आदर्श पतिव्रता के रूप में चित्रित करने के लिए तुलसी सीता को राम द्वारा कहीं अपमानित भी करवा देते। रामकथा में ऐसी संभावना थी। तुलसी ने तो परंपरा प्राप्त रामकथा में से सीता निर्वासन का अंश भी निकाल दिया। तुलसी ने एक काम जरूर किया, उन्होंने सीता और राम का विवाह के पूर्व पुष्प वाटिका में मिलन करा दिया। क्या कन्या के विवाह के पूर्व अज्ञात युवक के प्रति आकृष्ट होना उचित है? राम को देखने के लिए सीता की उत्कंठा देखिए। चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृग सभीत। और राम, बात तो राम लक्ष्मण से कर रहे हैं, लेकिन मन सीता के रूप में फंसा है। करत वत कही अनुज सनमन सीय रूप लोभान। यानी तुलसी ने सीता राम का प्रेम विवाह करा दिया। यह अंश तुलसी की नूतन प्रसंगोद भावना है। कहते हैं कंभ रामायण में भी यह उद्भावना है। यदि तुलसी ने यह अंश वहां से लिया भी है तो भी यह मानना चाहिए कि यह प्रसंग उन्हें इतना अच्छा लगा कि अपनी कृति में शामिल कर लिया। यह अंश थोड़ा और विचारणीय है, हमारे काम का है। पुष्प वाटिका में एक सखी फुलवारी में घूमने अलग निकल गई थी। उसने राम लक्ष्मण को देखा, वे इतने सुंदर है कि उनका बयान नहीं किया जा सकता। यह सुनकर सभी सयानी सखियां प्रसन्न हुई, विशेष रूप से यह जानकर कि सीता के हृदय में उन्हें देखने की उत्कंठा हो रही है। सुनिए हर्षि सब सखी सयाने सियही अति उत्कंठा जाने। सखी के वचन सुनकर सीता को बहुत अच्छा लगा। राम को देखने के लिए उनकी आंखें व्याकुल हो उठी। तासु वचन अति सियही सुहाने दरस लागी लोचन अकुलाने। राम सीता की ओर आकृष्ट हुए तो पहला ख्याल वंश का आया। मेरा मन आकृष्ट हुआ है तो सीता निश्चय ही वर्णिया जाति की होंगी। रघुवंश ही कर सहज सुभाव मन कुपंथ पगु धरे नकाऊ। मन अगर कहीं और गया तो कुपंथ पर गया, लेकिन सीता को इतना वंश विश्वास नहीं था। आकृष्ट होते उन्होंने पहला ख्याल आया पिता के प्रण का, वह मन में क्षुब्ध हुई। नकसिक देखे राम के शोभा सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। पिता की छाया कन्या की इच्छा के आड़े आती थी। पिता की इच्छा कन्या की इच्छा के आड़े आती थी। कन्या को विवाह अपनी इच्छा से नहीं, पिता की इच्छा या प्राण के पूरा करने वाले से करना था। शिव की बारात की विकटता की बात सुनकर पार्वती की मां नैना की पीड़ा असह्य हो गई। मैना पार्वती को गोद में बिठलाकर बोली, जिस विधि ने तुझे ऐसा सुंदर रूप दिया उसने तुम्हारे लिए ऐसा बावला वर दिया। मैं तुम्हें लेकर पर्वत से कूद पड़ूंगी, आग में कूद पड़ूंगी, समुद्र में डूब मरूंगी, घर बर्बाद हो जाए, अपयश हो, लेकिन जीते जी यह विवाह न होने दूंगी। जय भी ऋतुमहि रूप औषधीना तेही जड़ बर अरु बाउर कसकीना। कसकीन बरु बौराह विधि जही संत ही सुंदरता दई। जय फल चही सुर तरु ही सो बर बस बबु रही ला गई। तुम सहित गिरतो गिरो पावक जरो जल निधि मह परो। यह तुलसीदास के एक नारी पात्र का मध्यकालीन नारी विरोधी व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। इस व्यवस्था में नारी अपनी पीड़ा का अंत नहीं कर सकती तो अपने जीवन का ही अंत कर देती है। नारी की इस व्यवस्था का प्रधान कारण उसकी आर्थिक पराधीनता है। तुलसी इस पराधीनता के कारण को नहीं पहचानते थे, पराधीनता की पीड़ा महसूस करते थे। कतविधि सृज नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। भक्ति कवियों विशेषतः तुलसी और सूर्य ने भगवान के घर के बाहर की लीलाओं का जो वर्णन किया है उसमें उनका मन बहुत रमा है। तुलसी ने राम वनगमन के मार्ग पर राम लक्ष्मण सीता और उनके प्रति ग्रामीण नारियों के व्यवहार को जो वर्णन किया है वह भी द्रष्टव्य है। सीता को राजमहल में बहुत सुख था, लेकिन जो सुख उन्हें लोक सामान्य जीवन और प्रकृति ने दिया वह राजमहल में संभव नहीं था। चित्रकूट में सीता राम के प्रेम का चित्रण द्रष्टव्य है। नाह नेह नित बढ़त विलोकी हर्षित रहत दिवस जिमि कोकी। सिय मनु राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बन प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर असनु अमीय सम कंद मूल फर। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, अयोध्या से अधिक सुख का रहस्य क्या है, प्रिय के साथ सहयोग से अधिक अवसर, सहयोग के अधिक अवसर। अयोध्या में सहयोग और सेवा के इतने अवसर कहाँ मिल सकते थे। जीवन यात्रा की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति वन में अपने हाथों से करनी पड़ती थी। ऐसे प्राकृतिक जीवन में प्रेम का जो विकास हो सकता है वह कृत्रिम जीवन में दुर्लभ है। इसका कारण इस सुख का था हृदय का प्रकृति के अपने रूपों के साथ सामंजस्य, जिसके प्रभाव से कुरंग विहंग अपने परिवार के भीतर जान पड़ते थे। जिस कृत्रिम जीवन से उभर कर चित्रकूट में सीता को सुख मिल रहा था वह मध्यकालीन और सामंती था। कबीर तुलसी सूर जायसी मीरा आदि का साहित्य सामंती व्यवस्था और उसकी अनुगामिनी रीतिकालीनता पर चोट करता है। शुक्ल जी की व्याख्या के अनुसार चित्रकूट में सीता राम के साथ कर्मरत है, अपने हाथों काम करती हैं और प्रकृति के साचर्य में है, अतः सुखी हैं। जब तक स्त्री पुरुष के साथ व्यापक जीवन क्षेत्र में नहीं उतरती तब तक वह सच्चे स्वाभाविक प्रेम की अधिकारिणी नहीं बन सकती। प्रेम दो समान व्यक्तियों का हृदय व्यापार है, खिलाने वाला और खाने वाली, जीवर बनाने वाला और जीवर पहनने वाली का व्यापार नहीं। स्त्री चाहे जितनी आकर्षक हो, ड्राइंग रूम की गुड़िया बनी रहेगी तो विकर्षक जरूर हो जाएगी। सीता और राम के अडिग प्रेम का कारण राम के साथ सीता का वनगमन और वास है, सीता का सौंदर्य नहीं। सीता और राम के इस प्रेमोत्कर्ष की व्याख्या करते समय शुक्ल जी प्रिय के स्वाभाविक सहयोग की अभिलाषिणी एक ग्रामीण नायिका की पंक्ति उद्धृत करते हैं। आग लाग घर जरिगा, बड़ सुख कीन, पिए के हाथी घैलवा भरी भरी दीन। चाहे रामचरितमानस की सीता हो, चाहे यह ग्रामीण हो, चाहे मीरा, सभी उस व्यवस्था की नारियां हैं जिसमें नारी की सार्थकता चार दीवारी के अंदर ही थी। जिस व्यवस्था में स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण की छूट ही न हो, उसमें सच्चे प्रेम और सच्ची घृणा का अवकाश कहाँ। इन पंक्तियों में नायिका की वह छटपटाहट व्यक्त हुई है जो प्रिय की वास्तविक जीवन संगिनी न बन पाने के कारण है। प्रिय के हाथों में घड़ा भर भर कर देने का अवसर मिला तो घर की चार दीवारी में घुटती हुई ग्रामीणा का जीवन सार्थक हो उठा। घर जो उस दमघोटू व्यवस्था का प्रतीक है, जल गया तो बुरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ। घर को तोड़कर बाहर निकलने की आकांक्षा का जैसा सहज स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण सूरदास के यहाँ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला जिसमें ग्वाल बाल, गाय बैल, यमुना का तट, कदम्ब, करील के वृक्ष सब शामिल हैं, काव्य का साक्षात जीवन उत्सव है। वह सूरदास की बंद आंखों का देखा हुआ स्वप्न है जो मध्यकालीन सामंती नारी पराधीनता को तोड़कर एक सुखद समाज का स्वप्न है। जिस युग में सूरदास ने अपनी रचना की उसमें नारी पराधीन थे, लेकिन लीला वर्णन के माध्यम से सूर ने उस स्थिति का स्वप्न देखा जिसमें नारी बंधनों को तोड़कर कुंठारहित तौर पर अपने प्रिय के साथ विचर करती है। रास महारास का केवल धार्मिक आध्यात्मिक महत्व ही नहीं, उसका सामाजिक महत्व भी है। सूरदास का रास चित्रण सुख विभोर मानवता का सजीव स्वरूप गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी दृष्टियों से एकमेक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का पर्याय हो, सूरदास ने देखा। घर का यह तोड़ना असामाजिक नहीं, सामाजिक नियमों की अमानवीयता और सामाजिकता को तोड़ना है। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते हों, जिसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते हों, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को इस तरह यानी सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते। वस्तुतः अंतर तुलसीदास और सूर का उतना नहीं जितना राम और कृष्ण के चरित्रों का है। सूफी संत कवि जायसी को बहुत संवेदनशील एवं पर दुख कातर हृदय मिला था। उन्होंने पद्मावत में अलौकिक संकेत दिए हैं, साथ ही समाज की करुणा गाथा भी प्रस्तुत की है। पद्मावत में दंपत्ति प्रेम का विरह ही नहीं व्यंजित हुआ है, मानव समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र की करुणा व्यंजित हुई है। जायसी भारत के उन कवियों में से हैं जो विधि निषेधों को तोड़कर मानवीय पीड़ा को सहानुभूति देते हैं, जिनके यहाँ धार्मिक मत ग्रह पर दुख कातरता को कहीं भी बाधित नहीं करता। मत और सिद्धांत के आधार पर निर्मित पद्मावत का रूपक बीच बीच में लगातार उनकी सहानुभूति और करुणा से टूटता रहता है। जीवन यथार्थ से उत्पन्न मानवीय अनुभूति मतवाद पर आधारित रूपक को लांघती रहती है। नागमती शशंक थी कि रत्नसेन को कहीं पता चला कि पद्मिनी अधिक सुंदर है तो वह मुझसे विरक्त हो जाएगा। उसने हीरा मानसुग्य को मार डालने का उपक्रम किया। वेद खुल गया तो समझ गई कि मैं जुआ हार गई। हीरामन को वापस लौटा दिया और बोली, मैंने जो गर्व किया उसे तुम्हारा पता मुझे चल गया। जो 12 महीने तुम्हारी सेवा करती है, जरा से चूक होने पर उसका भी विनाश कर देते हो। जो तुम्हें अपना सर्वस्व गर्दन झुका कर देती है, उसका भी प्राण तुम लिए बिना छोड़ते नहीं। चाहे रानी हो चाहे चेरी, जिस पर तुम कृपा करो वही भली हो जाए। सेवा करें जो बरहो मासा, एक नीक अवगुण करहूं बिनासा। जो तुम देह नाई कई गीवा, छाटहु नहीं बिनु मारे जीवा। का रानी का चेरी कोई, जाक मया करहूं भली सोई। जैसी का कौशल यह है कि वह यथार्थ को चित्रित करके वर्णन शैली से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक संकेत करते हैं। ये वर्णन भौतिक यथार्थ और व्यंजित धार्मिक विचार दोनों को व्यंजित करते हैं। व्यंजना का आधार लौकिक स्थूल यथार्थ न हो तो वह अशक्त होगी। सखियों के साथ पद्मिनी मानसरोवर में स्नान करने गई, वहां खेलने लगी। खेलती थी और विवाहोत्परांत जीवन की पराधीन स्थिति के बारे में सोचकर चिंतित होती थी। रानी, मन में विचार के देखो, नैहर में 4 दिन रहना है, जब तक पिता का राज है, जो खेलना है खेल लो, कल ससुराल जाना होगा। तुम कहाँ हम कहाँ, या सरोवर कहाँ या तट। मायके आना क्या अपने हाथ में होगा, फिर साथ मिलकर खेलना कहाँ, सासू ननद की बोली जान ले लेगी, दारुण ससुर आने नहीं देगा, प्रिय का प्यार ही सहारा होगा, वह भी पता नहीं क्या करे, पता नहीं सुख से रखे दुख से, पता नहीं जिंदगी किस तरह बसर हो। ए रानी मनु देख विचारी, एही नैहर रहना दिनचारी, जौ लही अहे पिता कर राजू, खेल ले ही जौ खेल हूँ आजू, पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित ए सरवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलकर खेलब एक साथा, सासु नद बोली है जीव ले ही, दारुण ससुर न आवे देही, प्यो प्यार सब ऊपर सो पुनि करे दुह का, दुह सुख राखे की दुख दहूं कस जन्म निबाह। नारी पराधीनता का यह चित्रण तुलसी की अपेक्षा कम स्पष्ट नहीं। जायसी का कौशल यह है कि उन्होंने यह दुखद चिंता खेलने की सुखद स्थिति में प्रकट करवाई है। पद्मिनी सिंघलगढ़ से विदा होने लगी तो सभी बेहाल उठे। पद्मिनी ने कहा, अगर नैहर छूटना ही था तो पिता ने बचपन में रक्षण क्यों किया, मर क्यों नहीं गई, कंत के चलाने पर जा रही हूँ, क्या करूँ, हुक्म टाल नहीं सकती। सखियाँ रोने लगी, बोली तुम्हें देखकर हमें अपना भी दुख याद आ रहा है, अब तुम जैसी राजकुमारी न रहने पाई तो हम क्या, हम तो पराई हैं, हमारा तो आदि पिता था जिसने हृदय में उस दिन की बात न सोची, निष्ठुर था इसने ममता न दिखाई, हमें गेहूँ के लिए बेच दिया, जिस गेहूं के लिए बेचा उसका हृदय विदीर्ण हो गया किंतु उस पिता का हृदय द्रवित नहीं हुआ। धनी रोवत सब रो वही सखी, हम तुम देखी आप कह झखी, तुम ऐसी जह रहे न पाई, पुनि हम काह जो आही पराई, आदि पिता जो अहा हमारा, ओह नहीं यह दिन ही यह विचारा, ओह नकीर निहोरे ओहू, गाहम बेच लाख एक गोहू, मको गोह कर ही बहराना, पैसो पिता ना है ये छुहाना। आदि पिता ने बेटियों को गेहूं के लिए बेच दिया, आदि पिता आदम जो गेहूं का दाना खाने के लिए स्वर्ग से निकाले गए, आदि पिता पद्मिनी की परिचारिका सहेलियों के निर्धन जनक जिन्होंने भूख के लिए अपनी संतान राजा को पद्मिनी के पिता को बेच दी। इस तरह पद्मिनी के पिता उन लड़कियों के भी पिता हुए। धार्मिक और भौतिक दोनों अर्थ साथ साथ निकल रहे हैं। अन्योक्ति सहयोगति पर आधारित होती है, सहयोगति झूठी निरर्थक नहीं होती, उसकी यथार्थता ही अन्योक्ति की व्यंजना आधारित होती है। अन्योक्ति अन्य उक्ति है, सहज उक्ति से अलग उक्ति, एक और उक्ति, वह वाच्य है या व्यंग यह अलग बात है। तुलसी ने भी इस तथ्य को अंकित किया था अभिधा में, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। जायसी और तुलसी संत भक्त थे, वे मूलतः भक्ति भावना के कवि थे, लेकिन भक्ति उन्हें सहृदय बनाती थी, इसीलिए जीवन का चित्रण करते समय वे विषमता को महसूस करते थे। मानवीय पीड़ा और करुणा के कवि थे, नारी जीवन की पराधीनता और व्यवस्था उन्हें निसंदेह व्याकुल बनाती थी। भक्त कवि नारी निंदक नहीं, मध्यकाल की सामंती व्यवस्था में नारी का एक रूप ऐसा भी था जो केवल भोग्या के रूप में जाना जाता था, इसे भक्त कवियों विशेष तो कबीर तुलसी ने निंदनीय माना, उसे माया कहा, लेकिन वे नारी का केवल यही रूप नहीं देखते थे, वे नारी जीवन की संपूर्णता को उसकी विषमता के साथ देखते थे। उन्होंने नारी को अपनी रचनाओं में संपूर्णता के साथ चित्रित किया है, उसकी पराधीनता और व्यवस्था से वे द्रवित हुए हैं। नारी पराधीनता से उतना द्रवित आधुनिक काल के प्रेमचंद निराला जैसे साहित्यकार हुए हो तो हुए हों, लेकिन यह भक्त कवि नारी पराधीनता के सामाजिक आर्थिक कारणों को उतना नहीं समझते थे जितना कि आज के विचारक समझते हैं। धार्मिक आग्रह इनकी करुणा को सीमित और बाधित भी करता था। वे सती के त्याग बलिदान को देखते थे, सती प्रथा की अमानवीयता को नहीं महसूस करते थे। सती अपने पति के लिए जल जाए तो उत्तम, उनका जीवन सार्थक धन्य है, वह संतों का आदर्श और पति, उसे कोई रोक नहीं। इस पर इन कवियों ने बहुत कम लिखा, यह ज्ञान के ऐतिहासिक विकास की यानी विचारधारा की सीमा थी। जिस पिता ने गेहूं के लिए अपनी बेटी बेची वह निर्मम नहीं था, निर्मम और दारुण थे वे आर्थिक परिस्थितियां जिनके कारण निर्धन पिता को पत्थर बनकर अपनी संतान बेचनी पड़ी। जायसी ने इस पर नहीं लिखा, हालांकि यह पिता भी उनकी करुणा के हकदार थे। करुणा का विबोध समाज ऐतिहासिक विकास में अर्जित करता है। इसका क्षेत्र भी विकसित होता चल रहा है। लड़की को बेचने पर पिता को करुणा दी हमारे युग के अनन्य कथाकार प्रेमचंद ने। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 रुपए के दो नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए, कन्या से भी मुक्त हो गए और बाप दादों के निशाने भी बच गए। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा है और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ, और ऐसा परास्त हुआ कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, न हो तो तुम इसी वक्त नोखेराम के पास चले जाओ। पूरी दीनता से बोला, चला जाऊँगा, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। गोदान।